नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फरीदाबाद में 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की चार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 1331 युवाओं को ई नियुक्ति पत्र जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने और प्राकृतिक उद्यान विकसित करने सहित कई घोषणाएं की। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करीब 3000 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से अलंकृत किया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता ने दलहन और तिलहन की फसलों की बिजाई पर जोर दिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज फरीदाबाद शहर में 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 50 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विश्राम गृह का निर्माण, 41 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में 25 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाना शामिल है। इसके अलावा 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ओल्ड फरीदाबाद में स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से जेसी बोस विश्वविद्यालय में पूर्व में आयोजित मेगा रोजगार मेले में चयनित लगभग 1331 युवाओं को ई नियुक्ति पत्र भी जारी किए। उन्होंने फरीदाबाद को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने के उद्देश्य से स्वच्छता शुभंकर स्वच्छता कॉमिक का अनावरण भी किया तथा नगरवासियों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज फरीदाबाद में आयोजित धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली में फरीदाबाद के विकास के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा रखी मांगों पर कहा,
विपुल गोयल जी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ मांगे रखी हैं। फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन्होंने मांग रखी है कि गंगा का पानी पीने के लिए गुरुग्राम को मिले, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करके गंगा का पानी दलवाने का काम हम करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवनों और पार्कों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।
फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर और 300 सार्वजनिक पार्कों में प्रथम चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में संबंधित विभागों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्य नगर योजना के तहत एक नेचर पार्क का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन हॉल के सामने तथा श्रम अदालत के निकट एचएसबीपी की लगभग 3 एकड़ भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बनाने की भी घोषणा की। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा,
विकसित हरियाणा विकसित भारत इस विजन की सोच को लेके मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। विकसित हरियाणा का पहला पड़ाव है आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में देखा है और उसके बाद ये दूसरा पड़ाव नायब सिंह सैनी की सरकार का है। तेज गति के साथ 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम हो, ऐसी सोच को लेके आज मुख्यमंत्री जी विकास के काम में लगे। इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में वायदे कहे थे उसमें से 67 वायदों को पूरा करने का काम किया है।
रैली को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कई विधायक और मंत्री उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय मिशन के वास्तविक शिल्पकार हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डिग्री हासिल करने के बाद युवा नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करके भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। राज्यपाल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री घोष ने छात्रों को ज्ञान और चरित्र का संगम बनने के लिए प्रेरित करते हुए देश के विकास में अपना योगदान देने और तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को पारंपरिक नौकरी तक सीमित न रहने और नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए भी प्रेरित किया। दीक्षांत समारोह में उन्होंने अलग अलग विषय में पीएचडी के 112 विद्यार्थियों सहित पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर सहित करीब 3000 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने 89 विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षाओं में अव्वल रहने पर स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने कहा,
As the Chancellor of the University, I am really fortunate to be present today and distributed and offered degrees to the brilliant students of this university. I am really happy the achievement that the university has meant in the spread of education in making brilliant students who will contribute a great deal for the betterment and improvement of the socio-economic condition of our country.
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से अलंकृत किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा,
It's really a matter of honor for me that this degree has been conferred by the university. I do not know whether I deserve it or not, but the fact remains that all these things really motivate you to do more, in fact. I remember that when I passed out in 85, the convocation was probably held in 86 or 87, and we sat in these rows only to get our degrees.
छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि यदि राष्ट्र सशक्त होगा तो सभी स्वतः सशक्त होंगे। यदि हम केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति के बारे में सोचेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी हमें मिला है वो इसी राष्ट्र की देन है। पलवल के गांव घोड़ी में आज थानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा गेहूं फसल कटाई दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नई दिल्ली से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक तिलहन एवं दलहन डॉ. संजीव गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में डॉ. संजीव गुप्ता ने अच्छे उत्पादन के लिए आधुनिक तरीके एवं वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खेती करने और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से बचने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किसानों को तिलहन एवं दलहन की फसलों की बिजाई करनी चाहिए।
किसान भाई यहाँ पे बहुत मात्रा में गेहूं की खेती कर पलवल के गांव में, और मैं तो देख रहा हूँ सारे खेत गेहूं से भरे हुए हैं। गेहूं के साथ हमें दलहन लगानी चाहिए और तिलहन की भी खेती करनी चाहिए। गेहूं के बाद अगर हम समर में मूंग लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग, तो ये बड़े फायदे की खेती है। इससे कई फायदे हैं, एक तो खेत की संरचना में सुधार होगा, खेत की जो उर्वरकता है वो बढ़ेगी और अगली आने वाली फसलों को भी फायदा होगी।
डॉक्टर संजीव गुप्ता ने किसानों को दलहन और तिलहन की नई किस्में अपनाने की सलाह दी।
मैं किसान भाइयों को यहाँ सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी किस्में आ गई हैं जो कम दिनों में पक के तैयार हो जाती हैं और एक ही बार जो है फलियाँ आती हैं और पक जाती हैं, तो कटाई भी उनकी एक ही बार में हो सकती है। तो ऐसी किस्मों को हम अगर उगाएंगे तो और मूंग की पैदावार तो बढ़ेगी, देश में हम जो हमारा दाल का संकट है उसको भी हम दूर कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम अपनी खेत को उपजाऊ बनाए रखने में बड़ा मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के पूर्व निदेशक एवं हाइब्रिड फसलों के सलाहकार डॉ. साई दास सहित कई पूर्व कृषि वैज्ञानिकों और किसानों ने शिरकत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फरीदाबाद में 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 1331 युवाओं को ई नियुक्ति पत्र जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने और प्राकृतिक उद्यान विकसित करने सहित कई घोषणाएं की। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करीब 3000 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। छात्रों को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता ने दलहन और तिलहन की फसलों की बिजाई पर जोर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।